ओम शांति। राजयोग शिविर का आज दूसरा सत्र है कि जिसमें पिता परमात्मा का यथार्थ परिचय, जिस तरह कल आप सभी ने आत्मा की यथार्थता के बारे में जाना समझा, परंतु प्रैक्टिकल योग तभी हो सकता है जब हमारे पास पिता परमात्मा का भी यथार्थ परिचय हो, क्योंकि जहां तक आत्मा की बात आती है वहां तक तो एक ही मान्यता है संसार के अंदर कि आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चलाने वाली है, अजर अमर अविनाशी है, उसको हम सभी स्वीकार करते हैं, चाहे किसी ने उसको आत्मा कहा, सोल कहा, शक्ति कहा, रूह कहा, एनर्जी कहा, जो भी कहा। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां आज दुनिया के अंदर अनेक मत मतांतर हो गए हैं, और यही कहा जाता कि जितने दिमाग उतने विचार ईश्वर के बारे में, जितने मुख उतनी बातें। और इसलिए आज के युग में मनुष्य इतना कंफ्यूज्ड हो गया है कि आखिर भी परमात्मा कौन है। कई सारे ओपिनियंस हमारे पास है, लेकिन जब ईश्वर के लिए कहा जाता कि ईश्वर एक है, वो सत्य है, तो वो सत्य क्या है? क्योंकि 10 बातें हो हमारे सामने और हम कहे 10ों ही सत्य है, असंभव। सत्य तो एक ही होना चाहिए। तो ईश्वर अगर सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, तो वो ट्रुथ क्या है? कुछ समय पहले मैं कहीं गई थी तो एक बहन मेरे पास आकर कहने लगी कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी मां से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान है। वो कहता है अगर ये सारे भगवान है तो इन सबका हेड कौन है? परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सब भगवानों का हेड कौन है? वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई स्पेशल ओकेजन होता है, त्योहार होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है। यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई फोकस माई माइंड, मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं, किसमें करूं? इसीलिए वो बच्चा समझता है कि मंदिर जाने के बाद आई फील आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मेरा मन तो लगता नहीं है, तो मैं क्यों जाऊं? वो मां को लगता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है क्योंकि शायद उसके प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दे पा रही हूं इसीलिए। लेकिन वो उस मां का प्रॉब्लम नहीं है। आज की जनरेशन जब माता पिता से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, माता पिता को खुद ही पता नहीं है तो क्या जवाब देंगे? एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, दूसरी कॉलम में लिखा था अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था ईश्वर सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, छठी कॉलम में लिखा था वो साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड। अगर सचमुच भगवान है, कैन यू प्रूव इट? अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सारी कॉलम्स पढ़ने के बाद उसने क्या डिसीजन लिया होगा? व्हाट इज ट्रूथ? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्योंकि ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे? क्या ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे? क्या निराकार को कहे या साकार को कहे या है ही नहीं कहे? किसको सत्य माने? आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और होना चाहिए? क्या कहेंगे? सत्य कुछ और होना चाहिए जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया कि हाथी घर में जाके देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर हाथी कैसा था? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको वो देख नहीं पा रहे थे? क्या कहेंगे? सत्य कुछ और है। यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन मैं इस कहानी को थोड़ा एक्सटेंड करती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, आपको जाकर उनको बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये वन बाय वन जाते हैं। पहला जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंभे जैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। थोड़ी देर के बाद तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। थोड़ी देर के बाद चौथा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और थोड़ी देर के बाद पांचवा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा या पंखे जैसा है। अब ये छठा सूरदास क्या कंसीव करेगा कि हाथी है कैसा? हर कोई आता है अलग बात कहता है, आखिर ये प्राणी है कैसा। लेकिन सोचता है कि पांच ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही बोल रहे होंगे। होगा कोई ऐसा प्राणी जो घड़ी घड़ी रूप बदलता है, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है, एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है। आपने जो समझा वो उनको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और कहता है, देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंभे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी वो पंखे जैसा हो जाता है। सातवां सूरदास, जिसका आईक्यू लेवल हाई था, ये बात सुनने के बाद क्या कहेगा, क्या कहेगा? हाउ कैन यू बिलीव दिस? कोई प्राणी रंग बदल सकता है, लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे? हाउ इज इट पॉसिबल? पूरा ढांचा ही बदल दे, कैसे हो सकता है? और कैसे मान लिया तूने? तो छठा सूरदास क्या कहता है, पांच ने महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो सातवां सूरदास कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, कैन यू प्रूव इट? कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई? हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो उसने कह दिया प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने आत्माओं से कुछ महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में भगवान है, किसी ने निराकार में कुछ महसूस किया तो कहा निराकार है, किसी ने साकार में कुछ महसूस किया या प्राप्ति किया तो कहा साकार है। उन्होंने अपनी महसूसता को, अपने अनुभव को मनुष्य को सुनाया, मनुष्य ने विश्वास कर लिया। ऋषि मुनियों ने कहा है, झूठ थोड़ी बोलते होंगे, सही बोल रहे होंगे। विश्वास कर दिया, अपना लॉजिक नहीं यूज किया, अपना विवेक नहीं चलाया कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, इतने सारे ओपिनियन कैसे हो सकते हैं? अब वो मनुष्य ने आज की जेनरेशन के लोगों को समझाना चाहा, जिनका आईक्यू लेवल हाई है, उनको कहना चाहा ये सब भगवान है। आज का मनुष्य, आज की जेनरेशन का व्यक्ति ये सब बातें सुनने के बाद क्या कहता है, हाउ कैन यू बिलीव दिस? एक बात करो ना, इतने सारे भगवान कैसे हो सकते हैं? गॉड इज वन। तो मनुष्य क्या कहता है, अरे ऋषि मुनियों ने कहा है, झूठ थोड़ी कहा होगा, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। तो आज का मनुष्य क्या कहता है, आई डोंट बिलीव दिस, या कैन यू प्रूव इट? इसलिए दिन प्रतिदिन अगर देखा जाए हिंदू धर्म में, तो ईश्वर के नजदीक जाने के बजाय कहीं हम ईश्वर से दूर तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सत्य मालूम ही नहीं है। तो सत्य किसको कहा जाए? ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो सुनाया कि हमें उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी मतें हैं, ऑलरेडी आप कंफ्यूज स्टेज में हैं, हम और ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे जिस पर आप अपनी मत को कसकर देखो, सत्य है नहीं तो सत्य को प्राप्त करो उस कसौटी के माध्यम से, कि किसको सत्य कहा जाए। तो कसौटी है पांच बातें। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, सो ही शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड। दूसरा, ईश्वर उसको कहेंगे जो सुप्रीम अथॉरिटी हो, सर्वोच्च शक्ति। सुप्रीम के ऊपर कुछ नहीं होता है, सुप्रीम फाइनल होता है। तो परमात्मा भी सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसके ऊपर कोई अथॉरिटी है ही नहीं। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, यानी जैसे मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आती है, जन्म और मृत्यु का चक्र। अब जिसने जन्म लिया तो देह धारण किया, देह है तो देह के संबंध है, तो देह और देह के संबंध में हम आते हैं। ईश्वर अजन्मा है, अकाल मूरत है, जिसको काल कभी खाता नहीं है, तो न देह है न देह के संबंध है। अब जिसने देह धारण किया वो कर्म करता है, और कर्म करता है तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो जो कर्म और कर्म के फल के चक्र में आए उसको ईश्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि परमात्मा अकर्ता भोगता है, न कर्म करता है न भोगना भोगता है। चौथा, जब कर्म करते हैं तो या तो वो कर्म पाप कर्म होगा या पुण्य कर्म होगा, तो पाप और पुण्य के चक्र में हम आते हैं, वो पाप पुण्य के चक्र से भी परे हैं, और पाप और पुण्य के फल स्वरूप या सुख मिलता या दुख मिलता है, तो सुख दुख के चक्र में भी हम आते, वो परे हैं। दुख हरता सुख करता, तो सर्वोपरि। चौथा, जो सर्व परे होने के बावजूद भी सर्वज्ञ हो, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, त्रिकालदर्शी जिसको कहा जाए, जो तीनों कालों का दर्शन कराने वाला है। त्रिनेत्री जिसको कहा गया, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला हो, और त्रिमूर्ति यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति। पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए कहा गया कि मां सरस्वती स्वयं धरती का अगर कागज बनाए, जंगलों की कलम बनाए और समुद्र की स्याही बनाए और मां सरस्वती स्वयं बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे, तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा, अनंत है जिसकी महिमा, इन्फिनिट इन हिज क्वालिटीज। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत। अब अगर एक एक मत को उठा करके इस कसौटी पर कसकर देखो, सत्य है, जब हम कहते हैं नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? इस प्रकृति नेचर एक्सेप्टेड बाय ऑल द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड एज गॉड? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहते हैं? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। दूसरा, क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी ने बहुत सुंदर वो गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? आपका विवेक क्या कहता है? रचना है कहना सत्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति को परमेश्वर मानना ये अज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस। जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े। दूसरी बात, जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि या आत्मा ही परमात्मा है, ये कहां तक सत्य है? अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर भगवान के मंदिर में जाकर के हमने ये क्यों गाया, तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है, हम ही परमात्मा है या वो मात पिता और हम उसके बच्चे हैं? सत्य क्या है? आपका विवेक क्या कहता है? तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये सत्य है। तो इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। अगेन इट इज आउट ऑफ इग्नोरेंस जो हमने कह दिया। देखो, मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, वैसा उसको टाइटल मिलता है। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा। तो पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, देवात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं ये शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन सिंगुलर में ही आता है। तो इसीलिए, और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं है, पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, महान आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा, देवात्माएं भी कितने, 33 कोटि देवात्माएं, वो भी परमात्मा नहीं है, परमात्मा एक है। कई बार कई लोग एग्जाम्पल क्या देते हैं, सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे एक बड़ा परमात्मा है जिसके टुकड़े टुकड़े होकर के हम आत्माएं बनकर के इस संसार में आए और अंत में जाकर के उसी में विलीन हो जाना है और परमात्मा बन जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है क्योंकि वो मैटर है। आत्मा मैटर नहीं है, एनर्जी है, चैतन्य शक्ति है। एग्जाम्पल देवे तो बराबर का तो देवे। एनर्जी के लिए तो यही कहा गया है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा के लिए भी यही कहा जाता, आत्मा अजर अमर अविनाशी। अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो वो विलीन कैसे हो जाएगा? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा सागर बन गया। आत्मा भी अगर परमात्मा में विलीन हो जाए तो आत्मा का अस्तित्व समाप्त। जबकि आत्मा के लिए तो गीता में यही कहा गया, अजर अमर अविनाशी शक्ति है, तो विलीन होने की बात ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल ही फिट नहीं बैठता है। तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं, अरे जैसे पुत्र पिता का अंश है वैसे आत्मा भी परमात्मा का अंश है। पुत्र पिता का अंश है, अगेन इट इज मैटर। ये शरीर जो पंच तत्वों का बना है, मैटर का बना है, ये पिता का अंश है। आत्मा अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखती है, अजर अमर अविनाशी शक्ति, तो उसका एक अपना एग्जिस्टेंस है जो कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए कहा कि कई बार कई लोग एग्जाम्पल देते हैं और लोग विश्वास कर लेते हैं उस एग्जाम्पल को सुनते ही, ये नहीं सोचते हैं कहां मैटर कहां एनर्जी। एग्जाम्पल तो बराबर का देवे, मैटर मैटर में मिल सकता है क्योंकि मैटर अविनाशी नहीं है। मैटर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, परिवर्तनशील है, तो एग्जाम्पल ही गलत है। क्लियर है? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? अच्छा, तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, देखो अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते आए। एक तरफ कहा ब्रह्म ईश्वर है, दूसरी ओर कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। अब सत्य किसको कहे? आपका विवेक क्या कहता है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है? क्या कहेंगे? पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर कहना सत्य है। एक है मकान, एक है मकान मालिक। मकान मकान मालिक नहीं है, मकान में रहने वाला मकान मालिक है। तो ब्रह्म एक छठा तत्व है, पांच तत्वों की दुनिया से पार एक छठा तत्व है जिसको कहते ब्रह्म महतत्व। परमात्मा कोई तत्व नहीं है, उस तत्व में निवास करने वाला तथ्य है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच ईश्वर सुप्रीम अथॉरिटी कण कण में व्यापक है, कूड़ा कचरा गंध गटर सब में है। आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंध गटर सब में भगवान है? करेगा? आज कोई हमें कह दे कि फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है तो हमें कितना इंसल्ट महसूस होता है। और हम ईश्वर को कहे कूड़ा कचरा गंध गटर सब में है, क्या ये परमात्मा का अपमान नहीं है? तब मनुष्य क्या कहता है, नहीं, हरेक व्यक्ति में आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा है। अब ये कहां तक सत्य है? हर एक के अंदर अगर आत्मा भी है और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो तो एक व्यक्ति जब गलत काम करता है, किसी का खून करता है, तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस वक्त अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहे थे? क्या परमात्मा के पास इतनी शक्ति नहीं है जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? फिर उसका बैठने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब हुआ? आज देखो, गली के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं और मानो खेल खेल में कोई झगड़ा हो जाए उनका आपस में और मारपीट करने लग जाए और आप वहां बैठे हैं, देखते रहेंगे कि उसका कर्म वो जाने या छुड़ाएंगे कि बच्चे क्या चाहिए, क्यों लड़ रहे हो? खुद का बच्चा नहीं भी है तो भी बच्चों को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकते हो। तुरंत आप छुड़ाने जाएंगे, क्या चाहिए आपको, क्यों लड़ रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे थे, कहेंगे ना कि नहीं कहेंगे? अगर परमात्मा सब में विराजमान है और मनुष्य इतना गलत काम कर रहा है और वो उसको रोके नहीं तो उसका बैठने का कोई मतलब, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। कहते परमात्मा सबके कर्मों में इंटरफियर नहीं करता है तो फिर बैठने की जरूरत नहीं है ना, अगर उसको इंटरफियर ही नहीं करना है। जबकि कहा जाता है वो दया का सागर, करुणा का सागर, प्यार का सागर है, उस वक्त उसकी दया कहां गई, करुणा कहां गया, है ना? कोई हमें कोई बात बताता है या पूछता है और हमें मालूम नहीं है तो हम क्या कहेंगे? अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? कहते ना, कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, हु इज दिस ऊपर वाला? और सर्वव्यापी कौन है फिर? दोनों एक ही है या अलग है? श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में जब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, भावार्थ, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में आता हूं। अगर वो सर्वव्यापी है तो अधर्म होना ही नहीं चाहिए। अगर वो सर्वव्यापी है फिर कौन आएगा? और जो आएगा वो परमात्मा है या सर्वव्यापी है वो परमात्मा है? व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है? आज देखो, प्रकृति के अंदर भी ये गुण है कि एक अग्नि में लोहा रख दो, लोहे का एक रॉड रख दो, थोड़ी देर में देखा जाता है कि अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है कि लोहा भी एकदम लाल और गर्म हो जाता है। संग का रंग, अगर ईश्वर सर्व गुणों में अनंत है और वो सर्वव्यापी है तो उसके कोई गुणों का संग का रंग हमें नहीं दिखाई देता है, फील नहीं होता है। आज अगर प्रैक्टिकली देखा जाए संसार की हालत या मनुष्य की वृत्तियों को देखते हुए तो क्या कहेंगे, ईश्वर सर्वव्यापी है या शैतान सर्वव्यापी है? सर्वव्यापी कौन है? शैतान सर्वव्यापी है, ईश्वर नहीं है। और वो शैतान बुलवा रहा है मैं ही ईश्वर हूं और मैं सर्वव्यापी हूं, तभी तो अधर्म बढ़ा, नहीं तो अधर्म कैसे बढ़ता? तभी अधर्म बढ़ा ना, क्योंकि वो शैतान कह रहा है कि मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो, मैं सर्वव्यापी हूं, इसलिए अधर्म बढ़ता रहा। और मनुष्य सोच भी नहीं पाया, अपना विवेक भी नहीं चला पाए, लॉजिक को भी यूज नहीं किया उसने और उसी ट्रेंड में चला गया। लेकिन तब कहीं जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या कहते हैं कि ये सर्वव्यापी की बात भी तो शास्त्रों में ही आई है, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है कि शास्त्रों में जिस भाव से लिखा गया है उस भाव को हमने समझा ही ना हो, ये तो हो सकता है। शास्त्र गलत नहीं है। अब शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और कहा जाता है कि ऋषि मुनि अपनी साधना की शक्ति से, उस सिद्धि से समय को देख सकते थे। They were able to visualize time beforehand। समय के अंतराल से भविष्य को देख सकते थे। नॉस्ट्रोडेमस ने देखा, तो भारत के ऋषि मुनि नहीं देख सकते थे क्या? वो भी देख सकते थे, इतनी सिद्धि उनके पास भी थी। जब उन्होंने भविष्य को देखा और उसमें भी कलिकाल को देखा, तो देखा मनुष्य घोर पाप कर्म करेंगे। अब ये मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे? तब उन्होंने ये बात शास्त्रों में लिखी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, ईश्वर सर्वव्यापी है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक भय रहे और वो पाप कर्म न करे। आज से 300-400 साल पहले भी कोई अगर किसको पाप के लिए प्रेरित करता था तो मनुष्य क्या कह देता था? अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मना कर देता था। ऊपर वाला भी देख रहा है, कहता था। लेकिन आज कलिकाल में जो उन्होंने विजुअलाइज किया था वो प्रैक्टिकल हो रहा है कि आज अगर किसी को स्मृति भी दिलाई जाए, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। और ईश्वर अगर देखता है तो देखता क्यों है? वो तो सर्वशक्तिमान है, छुड़ा सकता है, वो छुड़ाए मुझे, वो डर भी नहीं रहा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस वक्त मां को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो मां क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाकर कहेगी, देख बाहर गया ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा, कहती है ना। और इसीलिए जब सारे लोग घर से बाहर जाते हैं तो वो बच्चा भी घुटना करते हुए जाता है, लेकिन जैसे ही कुत्ता को या गाय को देखता है क्या करेगा, वापस अंदर आता है और इतना खुश होता है, आई एम सेफ प्रकट करता है, आई एम सेफ, मैं बाहर नहीं गया, कुत्ता मुझे उठाकर नहीं लेके गया। लेकिन वही बच्चा 10 साल का हो जाए, उसके बाद उसको कह के तो देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी मां पर, मेरी मां भी कैसी, इतनी भोली है, उसको पता ही नहीं कुत्ता कोई उठा के ले जाएगा क्या। और हंसता हुआ वो भी निकल जाता है और बाहर जाकर कुत्ते के बच्चे को उठाकर घर में लाएगा और अपनी मां को कहेगा, देख मैं कुत्ते के बच्चे को लेके आया हूं, वो क्या मुझे उठा के ले जाएगा। जिस बात को उसने सत्य मान लिया था जब घुटना करता था, तब समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब ऋषि मुनियों ने यह बात कही थी तो 300-400 साल पहले भी मानव उस बात को स्वीकार करता था, पाप नहीं करता था। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और इसलिए जब उसको कहते हैं कि भगवान तुझे देख रहा है तो क्या कहता है, और वो देखता क्यों है, वो छुड़ाए ना, और सबका पेट कैसे पालूंगा अगर पाप नहीं किया तो। लेकिन शायद हम वो कहानी भूल गए वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि जी जब एक लुटेरे के रूप में थे, सबको लूटते थे, एक बार एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, उसको पकड़ लिया। महात्मा जी ने पूछा, आप ये क्यों कर रहे हैं? कहा, मेरे परिवार को पालना है, कैसे पालूंगा अगर लूटूंगा नहीं तो। तो कहा, पहले परिवार वालों से पूछ के आओ कि जब इसका फल भोगने का समय आएगा तब वो तेरे भागीदार बनेंगे, तेरे पाप के भागीदार बनेंगे। क्या क्यों नहीं बनेंगे, जरूर बनेंगे। क्या पूछ के तो आ। क्या ठीक है, आप यहीं रहना, मैं पूछ के आता हूं। गया, अपने माता पिता से पूछा कि मैं जो पाप कर रहा हूं, जब फल भोगने का समय आएगा तब आप फल भोगने में साथी रहेंगे ना। तो माता पिता ने क्या कहा, अरे बच्चे तुम कहां होगा, हम कहां होंगे, हमने पुनर्जन्म ले लिया होगा, हम कहां होंगे मालूम ही नहीं, तेरे पाप का फल हम कैसे भोगेंगे। जवाब मिल गया। पत्नी से पूछा, भाई मैं तू तो अर्धांगनी है, मेरे हर पाप और पुण्य में तुम साथी रहेगी। कहा, अब किसको मालूम कौन पहले जाता है, आप पहले चले गए तो मुझे तो पता नहीं चलेगा आपने कहां पुनर्जन्म लिया है, और अगर मैं चली गई तो आपको भी थोड़ी पता होगा कि मैंने पुनर्जन्म कहां लिया है, जो आपका फल मैं भोग सकूं या भोगने में साथीदार बनूं। तो पत्नी का भी जवाब मिल गया। बच्चों से पूछा, भाई मेरे पाप के भागीदार आप रहेंगे? तो बच्चों ने कहा, पिताजी आप तो पहले जाएंगे हमसे, आप कहां होंगे हम कहां हैं, हमें क्या मालूम कैसे हम भोगेंगे या आपके भागीदार बनेंगे। जब सब ने कह दिया कि आपके पाप में हम भागीदार नहीं है, आप जो पाप करके ले आ रहे हैं उसको हम भोगने में भागीदार हैं, लेकिन जब फल भोगने का समय आएगा तो आपको अकेले को ही भोगना होगा। तो परिवर्तन, आज जो कहते हैं कि भाई मैं कमा रहा हूं अपने परिवार को पालने के लिए, अरे पहले उन परिवार वालों से पूछो तो सही कि आपके पाप में वो भागीदार बनेंगे बनेंगे। क्या कहता है आपका विवेक? क्यों कर रहे हैं फिर पाप? इसलिए कहा, क्या ईश्वर सर्वव्यापी है या शैतान सर्वव्यापी है? कौन सर्वव्यापी है? कौन है? आपका विवेक क्या कहता है? शैतान है, ईश्वर नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। पांचवी बात, जब हम कहते निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, क्या नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है? हवा जो दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर एक चित्रकार को चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात दिखाना है तो दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? चित्र को देखकर कहेंगे बड़ी तेज हवा, चक्रवात दिखाया है। जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र में आकृति दे देता है। और शांत प्रकृति दिखानी है तो जैसे हवा चली नहीं रही है तो पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा देता है कि उस चित्र को देखकर कहेंगे प्रकृति कितनी शांत है। तो क्या स्वयं परमेश्वर नाम रूप आकार बिना हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसका नाम रूप आकार कौन सा है? जिस तरह एक मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु का पिता पशु है, पक्षी का पिता पक्षी है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति पुंज। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी यादगार में वो ज्योत जलाई है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज। अब उसके साथ वो पांचों बातों लगेगी। हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो उस ज्योति पुंज की ही यादगार प्रतिमा ज्योतिर्लिंगम है, जिस ज्योतिर्लिंगम की, लिंग माना आकृति, ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें। इसलिए हिंदू धर्म में एक आकृति दे दी जिस पर हम अपनी भावनाओं को अर्पित करते हैं और उसकी प्रति हमारी श्रद्धा भावना वो अर्पित करते हैं, और उसको नाम दिया सदाशिव, जो सदा कल्याण करने वाले, गुणवाचक नाम है। शिव माना शांति, कहीं अशांति होंगी तो कहेंगे बोलो शिव शांति करो। कोई बच्चे को देखते हैं तो कहेंगे शिव स्वरूप है, जैसे बच्चा पवित्र है परमात्मा परम पवित्र है। तो शिव माना कल्याणकारी, शिव माना शांति, शिव माना परम पवित्र, गुणवाचक नाम है। आज मनुष्य का नाम होगा ना गुणवाचक नहीं होगा, किसी का नाम होगा शांति भाई लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी। किसी का नाम होगा अमीर चंद होगा फकीर चंद, है ना। किसी का नाम होगा हसमुख बेन लेकिन कभी हंसते ही नहीं है। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है। आज तो लोगों ने देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिए, राम भाई, कृष्णा भाई, नारायण भाई, लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन, गुण एक भी नहीं होगा। न श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम का कोई मर्यादा वाला गुण होगा, है ना, लेकिन उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं तो डबल नाम चाहिए, राधे श्याम, सीताराम, गौरी शंकर, है ना, डबल नाम चाहिए। और साउथ में चले जाओ तो तीन तीन नाम होगा, शिवा रामा कृष्णा, शिवा भी रामा भी कृष्णा भी, क्वालिटी एक की भी नहीं होगी, है ना। ये मनुष्य के नाम है, लेकिन ईश्वर का नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। इसलिए भारत भर में द्वादश ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं, और वो भी एक साइंटिफिक तरीके से वो द्वादश ज्योतिर्लिंगम भी बने हुए हैं। तो इसीलिए कहा वो द्वादश ज्योतिर्लिंगम के जो नाम है वो भी गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है, और इसीलिए शिव के मंदिर की जब स्थापना होती है और मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की करनी होती है तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। कहां से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है, ऊपर से उतारा जाता है। बाकी सभी देवताओं की मूर्ति को द्वार से लाएंगे। भक्ति में भी इतना सुंदर यादगार है जिसको मनुष्य समझा नहीं कि एक शिवलिंग को ही ऊपर से क्यों उतारा जाता है, उसके बाद गुंबज लगाया जाता है, द्वार से नहीं लाया जाता है। कि एक परमात्मा ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं, किसी मां के गर्भ से इस संसार में, द्वार से नहीं आते हैं, ऊपर से अवतरित होते हैं। और इसलिए शिव के जितने भी मंदिर हैं भारत भर में, मैं समझती हूं भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव जी का मंदिर ना हो। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई है। नॉर्थ में जाओ श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी। तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा मिलेगी, गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तमिलनाडु में जाओ मुरुगन की पूजा मिलेगी, राजस्थान में जाओ रामदेवरा जी की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, लेकिन एक महादेव की पूजा सारे भारत भर में है। कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां महादेव का मंदिर नहीं। और इसीलिए उनको कहा देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की। रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, श्री राम के भी जो आराध्य रहे। वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर में श्री कृष्ण के भी जो आराध्य रहे। तो जितनी भी देवियां हैं वो देवियां कौन है? शिव शक्ति, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। इसलिए ये देवियों को भी गृहस्थी नहीं दिखाया है, शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती जरूर कर देते हैं जो शिव और शंकर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जहां दोनों का नाम अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आकृति ही अलग है, एक है ज्योति पुंज एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का ऑक्यूपेशन अलग है। शिव को कहा सदा कल्याण करने वाले, कल्याणकारी, परम पवित्र, शांति दाता, और शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश प्रलय हो जाते हैं। तो एक प्रलय नाथ, एक कल्याणकारी भोलानाथ, एक भोलानाथ एक प्रलय नाथ, नाम अलग, आइडेंटिटी अलग, स्वरूप अलग, ऑक्यूपेशन अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया। किसका ध्यान किया? कैलाश पर्वत पर जाकर किसका ध्यान किया? कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकृति का है। वहां बैठ करके शिव का ही तो ध्यान किया। अब शंकर को ध्यान करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि शंकर को गृहस्थी दिखाया, मां पार्वती ये दो बच्चे हैं, पूरा गृहस्थी, और सब मिलकर के शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, ऐसे चित्र भी देखे होंगे आपने। और कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने ध्यान किया। क्यों ध्यान किया, उसे क्या चाहिए था शिव से जो ध्यान करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि शंकर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति होनी चाहिए जो ध्यान के माध्यम से ही उस शक्ति को अपने अंदर हासिल कर सकते हैं और तब अपने कार्य को यथार्थ रीति से कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने शिव का ही ध्यान करके उस शक्ति को हासिल किया। यह तो ही भारत वालों की बात। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी शिव के मंदिर है, उस मंदिर के नाम के पीछे या नाथ या ईश्वर होगा। अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सर्व का नाथ और ईश्वर एक ही है। लेकिन समझे ही नहीं हम। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाए, इस्लाम धर्म में जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु जब मक्का जाते हैं हज यात्रा पर, वहां जाकर क्या करते हैं लोग? हर मुसलमान की ये भावना रहती है कि एक बार काबा के पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। ये काबा के पवित्र पत्थर के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि जब इस्लाम धर्म में ईश्वर के बात को लेकर के मतभेद हो गया और लड़ाई झगड़े होने लगे, उस वक्त ऊपर से ये पवित्र पत्थर गिरा था और एक आकाशवाणी हुई थी कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो। और स्वयं मोहम्मद पैगंबर साहब ने अपने हाथों से उस पवित्र पत्थर की स्थापना मक्का में की थी। और तब से लेकर के ये मान्यता हुई कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य होना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए हर साल उनकी हज यात्रा निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है, वहां जाने के बाद क्या करता है? अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक पिल्लर है जिसको वो शैतान कहते हैं, उस शैतान को पत्थर मारते हैं और फिर ये पवित्र पत्थर को जाकर चूमते हैं, 7 बार उसकी परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है, और वो लाइन है, हे परवरदिगार, ईश्वर को संबोधित किया, हे परवरदिगार, नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, कबूल हो, कबूल हो। नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब ज्योति, प्रकाश, तेज। उन्होंने नूर कहा, हमने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए क्रिश्चियन धर्म में, जीसस ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। इसीलिए आज भी अगर वेटिकन चले जाओ, रोम के पास में वेटिकन जो देश माना गया है, उस वेटिकन के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का सिंबल मिलेगा। आप गूगल करेंगे तो भी आपको वो यही दिखाएंगे, लाइट है। तो जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओंकार निराकार निर्वैर सतनाम अजोनी, कितनी सुंदर तरीके से अकाल मूरत, एक एक बात को स्पष्ट किया कि जो निराकार है, निर्वैर है, सत्य नाम है, वही एक सत्य नाम है, जो अकाल मूरत है, जो किसी योनियों में नहीं आते। और इसीलिए गुरु नानक देव ने भी कहा, एक नूर, उसी को परमेश्वर का वाहेगुरु कहा। और इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को मूर्ति पूजा की ओर प्रेरित नहीं किया, लेकिन वो भी ध्यान मग्न है। किसका ध्यान कर रहे हैं? आज भी अगर जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है, जिसको कहते हैं शिंतोनिज्म सेक्ट वाले विशेष ये मान्यता रखते हैं कि जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है, जो शांति का दाता, नाम दिया चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी का मतलब है शांति का दाता, जिसका ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भी ध्यान किसका किया? उस चिंकोन शेकी का किया। और आगे जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में किसका ध्यान करते हैं? आप किसी भी जैन धर्म में जाकर के, वहां उनके मंदिरों में जाकर के अगर पूछो कि ये 24 के 24 तीर्थंकर किसका ध्यान कर रहे हैं, तो कहेंगे सिद्ध शिला का। सिद्ध शिलापति उसको कहा गया। सिद्ध शिलापति माना जो सर्वश्रेष्ठ है, उसका ध्यान किया। और वो सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो कहा निराकार है, उसी का ध्यान कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, वो भी ध्यान मुद्रा में है, उसी का ध्यान कर रहे हैं, सिद्ध शिला। और आगे जाए, पारसी धर्म में तो कहा जाता है कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर आए थे। आज भी उनके मंदिर को कहा जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती है, यह बुझती नहीं है कभी भी, अखंड ज्योति स्वरूप। तो नाम भले अलग अलग है, स्वरूप तो एक ही है, आइडेंटिटी तो एक ही है। किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। फिर हम रास्ता भूले कहां से, जो हमने इन सबको भगवान मान लिया और उस भगवान को ही भूल गए, उसको भूल गए, उसको सर्वव्यापी कह दिया, और जिन्होंने भी उसके तरफ इशारा किया उसको भगवान बना दिया। तो हम रास्ता भूले कहां से, और क्या पुनः हम उस ईश्वर के श्रेष्ठ राह पर नहीं आ सकते हैं? तो इसलिए कहा, नाम भले अलग अलग है, स्वरूप तो एक ही है। ज्योति स्वरूप, नूर, प्रकाश, लाइट, अखंड ज्योति, निराकार स्वरूप ही है। दूसरा, सर्वोच्च शक्ति, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ है, उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता नहीं है। स्वयंभू है, शिव शंभु कहा। शंभु शंकर के लिए नहीं कहा, शिव के लिए कहा गया है। जो सभी चक्रों से परे हैं, तीसरा सर्वोपरि, न जन्म है न मृत्यु है, इसलिए उसको महाकालेश्वर कहा गया। महाकालेश्वर जो कालों का भी काल महाकाल है, जिसको काल खा नहीं सकता है, महाकालेश्वर। तो जो अजन्मा है और अमर है, अमरनाथ उसको कहते हैं। तो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर न देह है, न देह के संबंध है, न कर्म है, न कर्म का फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है। जो दुख हरता सुख करता है, लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ है। चौथी बात, शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है। ये तीन लकीर अर्थात जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानने वाला, बीच में एक आंख होती है अर्थात त्रिनेत्री, जो मनुष्य को भी ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बैल पत्र चढ़ता है, जो डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होने चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। तो त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा द्वारा जिसने सृजन करवाया, विष्णु द्वारा उसकी पालना कराई, और शंकर द्वारा जो महाविनाश करण करावन हार कौन है, परमेश्वर खुद करता नहीं है, लेकिन ये तीन मूर्तियों के द्वारा कराता है, सृजन, पालना और महाविनाश। इसलिए ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। हिंदू धर्म में जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश कहा, तो इस्लाम धर्म में जिब्राइल, मिकाइल और इसराफिल कहते हैं। जिब्राइल जो सबक देता है, ज्ञान देता है, स्थापना के लिए ज्ञान सबक दिया। मिकाइल यानी जो रोजी रोटी देता है, यानी पालना करता है। और इसराफिल जो कयामत लाता है, जो शंकर जिसको कहा। तो क्रिश्चियन धर्म में भी द थ्री होली एंजल्स या थ्री होली गोस्ट कहते हैं, जीओडी, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो गुरु नानक देव ने कहा, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। हर धर्म में आप देखेंगे ये तीन मूर्तियों का गायन भी जरूर होगा, क्योंकि परमात्मा अपना कार्य इन तीन मूर्तियों से कराता है, इसलिए उसको करण करावनहार कहा जाता है। खुद करता है लेकिन कराता है। और पांचवी बात, सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। तो उसके नाम में ही सारे गुण समाये हुए हैं, अनंत है जो सर्व शक्तियों में। इसीलिए तो देवताओं ने भी उसको अपना आराध्य माना, शक्ति प्राप्त की जब आवश्यकता थी। महाभारत के युद्ध के पहले भी श्री कृष्ण ने पांडवों को साणेश्वर मंदिर में ले जाकर के पूजा की और कराई, और विजय भव का वरदान लिया, तभी तो विजयी हुए। दिलाने वाला, विजय दिलाने वाला कौन था? परमात्मा था। इसीलिए आज भी उसका यादगार वहां है कि स्वयं श्री कृष्ण ने वहां पर पूजा की है, पांडव उसे कराई है। तो पांचों ही कसौटी पर एक ही खरा उतरता है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी चाहिए वही है या दूसरा है, तीसरा क्वालिफिकेशन चाहिए, चौथा एड्रेस चाहिए और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन चाहिए। पांच बातों में संपूर्ण परिचय आता है। तो आज ईश्वर के परिचय में भी हमने ये पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है सदाशिव, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, मालिक, जो भी कहो, जिसकी आइडेंटिटी ज्योति स्वरूप नूर प्रकाश लाइट अखंड ज्योति निराकार है, जिसकी क्वालिफिकेशन पांच बातें सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च शक्ति सर्वोपरि सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, ये क्वालिफिकेशन है। एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर जो वहां के निवासी है, इसलिए गीता में भी कहा मेरा धाम परम धाम है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी पहुंच नहीं सकती है परंतु जो स्वयं प्रकाशित है। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, है ना, जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब वो परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। तो वो परमेश्वर आकर के वो कार्य कर रहे हैं, तभी तो हमें पता चला, नहीं तो हम भी आप लोग जैसे ही थे, सर्वव्यापी कह देते, अज्ञानता के कारण क्या क्या कह दिया उनको पता ही नहीं चला। लेकिन आज तो अगर आपका पोता आपसे पूछे या आपका बच्चा आपसे पूछे कि ये सभी भगवानों का हेड कौन है, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकते? बता सकते हैं, अब तो क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या है कोई प्रश्न, क्लियर? अच्छा, तो अभी तो मन लगेगा। आज तक हमारी शिकायत रहती थी ईश्वर में मन नहीं लगता है, क्योंकि पता ही नहीं था ना कहां लगाना, मन का दोष नहीं था, हम मन को दोषी मानते रहे, मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दुष्ट है, पापी है, इसलिए लगता नहीं, मन का दोष नहीं, उसको पता ही नहीं था। अब तो पता चल गया, अब तो लगेगा, अब तो ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा? तो चलो 2 मिनट परमात्मा स्मृति में बैठते हैं।